بھائی ہم سب ایک بڑی ان کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، تو نسبت کیا ہے؟ دین کی نسبت ہے، اور ہم سب محتاج ہیں دین کے، میں بھی آپ بھی پوری محتاج ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، کیونکہ اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے تاکہ یہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اور میں بھی اور آپ بھی ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم، میں بھی اس پہ عمل کر سکوں اور آپ بھی عمل کر سکوں، یہ نہ ہو کہ میں بات کرتے چلا جاؤں آپ بات سن کے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم سب اگر اللہ کے لیے بیٹھیں گے اور میں اللہ کے لیے بات کروں گا تو پھر فائدہ ہوگا، اگر میں ہیرو بن کے آیا اور آپ بھی ہیرو سمجھ کے یہاں آئے تو فائدہ نہیں ہوگا، نہ مجھے فائدہ ہوگا نہ آپ کو۔ اصل چیز ہے کہ ہم اللہ کے لیے بات کریں، اللہ کے لیے بات سنیں اور عمل کی نیت سے کریں۔ جیسے میں نے کسی بڑے سے سنا ہے کہ معلومات دین کا نام نہیں ہے، عمل دین کا نام ہے، معلومات تو ہے لیکن عمل نہیں ہے تو فائدہ نہیں، اس لیے عمل کی نیت سے میں بھی بولوں اور آپ بھی اس کو سنیں گے تاکہ عمل کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھائی بڑے مختصر وقت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ آج میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے نہ ہو، کوئی رشتے دار، کسی کی والدہ، کل کو ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو ہم سب نے قبر میں جانا ہے، حشر ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے اگر اس کی تیاری ہم نے نہیں کی تو یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے نا ایک دم ختم ہو جائے گی۔ آخر میں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کتنی دیر زندگی گزاری تو کوئی کہے گا 1 منٹ، کوئی کہے گا 2 منٹ، اس سے زیادہ زندگی نہیں ہماری، تو یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کو ہم اللہ کے حکموں پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ گزار کر چلے جائیں تو قبر میں بھی آسانی ہوگی، حشر میں بھی، اللہ کے سامنے بھی، ہر جگہ آسانی ہوگی۔ اور اگر یہ تھوڑی سی زندگی ہم نے غیروں کے طریقوں پر اور اللہ کے احکامات توڑ کے گزاری تو بھی آخرت میں پکڑ کا باعث بن جائے۔ اللہ کے ہاں کامیابی اعمال والوں کی، جس کے اعمال دین پر ہوں، اللہ کے ہاں پیسے والا، شہرت والا، عہدے والا، حکومت والا، اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے پاس شہرت زیادہ ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا، یہ اللہ کے ہاں کوئی کرائٹیریا نہیں، اللہ کے ہاں اعمال والا کامیاب ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو۔ جیسے قرآن میں بھرا پڑا ہے کہ جیسے قارون، نمرود، فرعون، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے سارے نقشوں کے ہوتے ہوئے ناکام کر دیا، جو بڑے بڑے اپنے آپ میں وہ تھے، بادشاہ تھے، کوئی کہتا تھا نعوذ باللہ میں خدا ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نقشوں کے ساتھ غرق کیا، سب کو ناکام کیا اللہ تعالیٰ۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ گھر تھا، نہ کچھ، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ میں سب سے زیادہ غنی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی میں رہتے تھے تو وہ کامیاب ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حسب نسب کچھ بھی نہیں تھا، کالے تھے، حبشی، لیکن اللہ کے یہاں وہ کامیاب ہے، اور کامیابی بھی اللہ نے کیسی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، جس اونٹنی پہ وہ سوار ہوں گے اس کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، تو یہ کامیابی ہے۔ لیکن آج میری اور آپ کی، ہم سب کی جو صلاحیتیں ہیں، جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہوئی ہیں، اس کو ہم دنیا پہ لگا رہے ہیں کہ کس طرح میں پیسے بنا لوں، کس طرح مجھے کوئی عہدہ مل جائے، کس طرح کوئی حکومت مل جائے، شہرت مل جائے، اس چیز کا یقین نہیں آ رہا کہ اللہ کے حکموں پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی دونوں جہان کی کامیابی ہے، اور کہیں بھی کوئی کامیابی۔ ہاں یہ بھی کہیں منع نہیں ہے کہ ہم काम ना करें, बिदत ना करें, खेले ना, ये कहीं मना नहीं है। लेकिन इसमें अगर हमने अल्लाह के हुक्म तोड़े, नबी का तरीका छोड़ा, तो फिर ये हमारे लिए पकड़ का बायस बनेगा कि जी मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, या मेरी जॉब ऐसी है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर नहीं चल सकता, दाढ़ी नहीं रख सकता, शलवार कमीज नहीं पहन सकता। ये सारी चीजें आप हमें पकड़ का बन जाए। इस चीज का यकीन लाना, और यकीन कहां से आएगा, जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो रही है। घर बैठ के ये बात समझ में नहीं आएगी। जैसे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जाके बनता है ना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, क्रिकेटर ग्राउंड में, कोई भी स्पोर्ट्स हो, ग्राउंड में जाके मेहनत करेगा तो प्लेयर बनता है। इसी तरह दीन जिंदगी में आएगा, आप की जिंदगी उस पर हमारी जिंदगी में आएगी जब हम मस्जिद वाले माहौल में आएंगे जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो रही, हराम हलाल को उस पर पता चलेगा, वरना कोई फर्क मालूम नहीं होगा। कुरान भरा पड़ा इन वाकया से, जिन्होंने दुनिया पे हुकूमत के लिए, ओहदों के लिए सारी उम्र गुजार दी, अल्लाह ताला ने उन सबको नाकाम कर दिया। फिरौन नऊज बिल्ला कहता था कि मैं खुदा हूं, अल्लाह ताला ने कितने अजाब भेजे। आखिरी अजाब जो पानी का आया, समंदर में जो डूबा है, उस वक्त उसने कहा है कि मैं हारून और मूसा के रब पे ईमान लाता हूँ, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उसके मुंह में मट्टी डलवा दी। सब कुछ था लेकिन नाकाम हो गए ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में कुछ भी नहीं था, आराम से उस पानी से गुजर गए। कुछ नहीं था दुनियावी हिसाब से, लेकिन अल्लाह उनके साथ थे तो सब कुछ है। जिसके बाद अल्लाह उसके साथ सब कुछ है, तो उस समंदर से वो आराम से गुजर गए जिसके साथ अल्लाह था, और जिसके पास दुनियावी सारी चीजें थी लेकिन अल्लाह नहीं थे, नाकाम हो गए। तो इस बात का यकीन हमने लाना है कि हमने अपने साथ अल्लाह को लेना है। ये पैसे, ये ओहदे, ये शोहरत, ये सब चले जाएंगे, कोई भी साथ लेके नहीं जा सकता। अगर अमाल पे जिंदगी गुजरी तो वो काम आएगी कब्र में, और अगर अमाल पे नहीं गुजरी और सारा कुछ दुनिया का हमारे पास है तो कब्र में अजाब का बायस बन जाएगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 दिन आग में पाल के दिखाया, तो कैसा यकीन था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था तो हवार पानी के फरिश्ते आए मदद के लिए, उन्होंने कहा आपको अल्लाह ने भेजा है? उन्होंने कहा अल्लाह ने नहीं भेजा, हम इजाजत लेकर आए। तो उन्होंने कहा मेरे लिए मेरे अल्लाह ही काफी। कैसा यकीन था अल्लाह के साथ पर, और जैसा गुमान किया था अल्लाह के साथ, अल्लाह ने वैसे ही फिर किया कि बराह रास्त आग में मदद कीजिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला आग को हुक्म दिया, तो आग भी अल्लाह की मखलूक है। आग को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उस आग। तो जब अल्लाह की मान कर चलेंगे, अल्लाह पे ऐसा यकीन होगा, तो अल्लाह आज भी वैसी मदद करेंगे जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की। बात सिर्फ यकीन की है कि किस तरह हमारा यकीन इस बात पर आ जाए कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस चीज का यकीन लाना है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 दिन मछली के पेट में पाल के दिखाया। मछली भी अल्लाह की मखलूक है, जब तक कि अल्लाह ने नहीं चाहा वो यूनुस अलैहिस्सलाम को नहीं खा सके। 40 दिन मछली के पेट में रहे लेकिन जिंदा पाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बगैर मौसम के फल देते, गर्मियों में सर्दी के, सर्दियों में गर्मी के, तो ये कौन दे रहा है? अल्लाह ताला दे रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोड़ों को ठीक कर देते, मुर्दों को जिंदा कर देते, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। मुर्दे को जो उठा रहा है वो कौन उठा रहा है? अल्लाह उठा रहे हैं। आज कई लोग इस बात से यकीन नहीं रखते कि बाद में जिंदा उठाए जाएंगे, लेकिन अल्लाह उठाएंगे सबको। जैसे हमारे साथ बहु गड़बड़ होता था, तो उससे कभी कभी बात करते थे, वो ये कहते हैं यही सोचा था यही जन्नत है, जब मैं मर जाऊंगा तो सो जाऊंगा, फिर मुझे कुछ पता नहीं क्या होना है। तो मैं उनसे मजाक बात करते थे कि नहीं सो नहीं जाओगे, बाद में लगेगा पता जब उठाएंगे। मुझे भी, हमें भी, जो हमने किया होगा उसकी हमें सजा तो मिलेगी। अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे पकड़ ले, अल्लाह को तो कोई पूछ नहीं सकता। लेकिन ये है कि गैर मुस्लिम को तो दोजख में जाने जाना है अगर वो कलमा नहीं पढ़ेगा। इसलिए आप सबको इस कलमे की अहमियत का पता होना चाहिए कि कितना कीमती और वजनी कलमा है। हदीस में आता है कि इस एक पलड़े में इस कलमे को रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में सातों आसमान और जमीन रख दिए जाए ना, तो ये कलमे वाला जो पलड़ा है वो झुक जाए, इतना कीमती और वजनी कलमा है। लेकिन मुझे और आपको बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप पैदाइशी मुसलमान हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घर में पैदा हुए, इसके लिए कोई ना कुर्बानी दी ना मेहनत की। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछे जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी है, जब उन्होंने कलमा पढ़ा था तपती हुई रेत पे लिटा दिया जाता था, पत्थर रख दिए जाते, मारा जाता था, तो किस लिए ये मारे खा रहे थे, मुश्किलें उठा रहे थे? इस कलमे के लिए। मैंने और आपने तो खुद कुर्बानी नहीं दी, कोई मुसलमान घर में पैदा हो गए, मैंने मुसलमान मुल्क में कलमा पढ़ा, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस कलमे का आपको अभी एहसास नहीं हो रहा, कलमा तो सबने पढ़ा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अभी इसका मतलब या इसके मानी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, बस जिंदगी गुजारी जा रही। जैसे इसका पहला जज है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इसका मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, यकीनों की तब्दीली, कि सारा का सारा यकीन हमारा अल्लाह की ज़ात पर आ जाए, मखलूक की तरफ ना जाए, कि मेरा ये काम कर देगा, मेरे पैसा काम कर देगा, मेरी हुकूमत वाला को काम कर देगा, उसे वाला को मेरी मसले बना देगा, इस पे यकीन नहीं होना चाहिए, यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, ये ला इलाहा इल्लल्लाह। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ये है कि तरीकों की तब्दीली, जो तरीके हमारे गैरों से मेल खाते हैं वो उनसे हटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से मेल खाना शुरू हो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने दाढ़ी रखी है या मैंने शलवार कमीज पहनी हुई है, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैंने भी ऐसे ही बैठ बैठ कर ऐसे माहौल में वहाँ से बात सुन सुन के ये बात दिमाग में आई है, जहन में आई है, दिल में आई है, कि इसी में कामयाबी और कहीं को कामयाबी। आसरतन की ज़ात रहमतुल्लामी बाबरकत ज़ात, पहले उस दौर में जब बच्चे पैदा होते थे वो किसी दाई को देते थे ना, तो ऐसी बाबरकत ज़ात आसरतन की, तो बचपन में जिस दाई ने आसरतन को लिया था उसकी जो ऊँटनी थी वो इतनी बीमार थी कि सबसे पीछे थी वहाँ, और कोई भी अपना बच्चा उनको नहीं दे रहा था, तो आखिर में आसरतन बचे थे तो उन्होंने लिया था दाई हलीमा। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, उन्होंने लिया तो उनकी ऊँटनी सबसे आगे थी और इतनी सेहतमंद होगी, और जब घर गए तो दूध ही दूध बकरियों में, ऊँटनी में, और बरकत ही बरकत उसके घर में आ गई, कितनी बाबरकत ज़ात है आप सल्लल्लाहु। मुझे और आपको तो समझ नहीं आ रही है, हम कह रहे हैं कि क्लीन शेव में ही कामयाबी है, पैंट शर्ट में ही कामयाबी है, जितने भी तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम तोड़ेंगे, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे लगते हैं लेकिन उनके तरीके अच्छे नहीं लगते, ऐसे अगर हम यहाँ बैठे हुए 100 बंदे बैठे हैं तो 90 बंदों ने तो पैंट शर्ट और क्लीन शेव में, इसके मतलब हमें तो वो बस नाम से अच्छे लगते हैं ना, तरीके नहीं हमें अच्छे लगते। ये बात इसलिए नहीं मैं कह रहा कि आप लोगों को कोई टीज है या तो वो है, लेकिन हर जगह ये बात जरूर करता हूँ, ये हमारी बेहतरी के लिए, जब बच्चा बीमार होता है तो दिल थोड़ी करता है उसको टीके लगवाएं या हॉस्पिटल में दाखिल करें या कड़वी दवाई दें, वो इसलिए दिया जाता है कि उसकी बेहतरी के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारी बेहतरी के लिए, जो भी इख्तियार करेगा उसे अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में उसको कामयाब कर देगा। जैसे लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है लाहौर में, तो वहाँ उन दिनों में ये नाउज़ बिल्ला कार्टून और जो ये यूट्यूब पर और वो क्या है फेसबुक पर वो आ रहे थे, तो उन दिनों में बड़ी रैलियाँ पाकिस्तान में निकाली जा रही थी, तो बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे थे पाकिस्तानी मुसलमान जो है, करना भी चाहिए इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन तरीका ये सही नहीं है। उसमें ये था कि जब उन्होंने कहा जी हम रैली निकालेंगे सुबह मेडिकल कॉलेज से लेकर और कलमा चौक तक, मैंने कहा रैली तो आप निकालेंगे जब ये टीवी में दिखाया जाएगा, हर जगह दिखाया जाएगा मीडिया में, तो वो तो कहेंगे ये तो हमारे अपने लोग हैं, सारे क्लीन शर्ट सारे पैंट शर्ट वाले हैं, तो रैली किसके बारे में निकाली जा रही है? रैली तो इसलिए निकाली जा रही है ना कि आप सरस ने उन्होंने कार्टून नाउजिला बनाए, तो जो रैली निकाल रहे हैं वो खुद कार्टून बने हुए, उसका क्या करेंगे आप? तो जब तक हमारे अंदर अहमियत नहीं आएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, अल्लाह के अहकाम की, उस वक्त ऐसे ही गैर मुस्लिम करें, क्योंकि हम तो उन्हें खुद फॉलो कर रहे हैं। हमारा जनेद भाई का बयान था उधर साथ यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद के करीब है कोई जगह, तो वहां वो जो हॉल था फुल था, तो जितने यूनिवर्सिटी के लड़के थे सारे हॉल में थे माशाल्लाह, तो मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था, तो दरम्यान में वो पूछते थे यूसुफ भाई ये दाढ़ी रख के आप लोग कैसे पूरी दुनिया में घूम लेते, ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, हमें तो नौकरी नहीं मिलेगी अगर हमने दाढ़ी रखी, हम तो एयरपोर्ट भी पकड़े जाएंगे, ऐसा यकीन बना हुआ है हमारा। किसकी सुन्नत के बारे में कह रहे हैं जिनके लिए सारी कायनात बनी है, वजह कायनात है, अल्लाह के महबूब है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं जिसका महकूम है अल्लाह कभी पेशी माफ करे, कि जो चाहता है कि मैं उससे मोहब्बत करूं वो मेरे नबी की मुकम्मल इतबा करे। अब इतबा क्या करनी, वो तो डर रहे हैं मुसलमान, डर रहे हैं, इतबा तो कहीं दूर की रही बात। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए रोल मॉडल बनाकर भेजा, मैं या कोई फिल्मी हीरो या कोई क्रिकेट का हीरो या कोई फुटबॉल का हीरो, ये सब जीरो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असली हीरो है, जो उनकी नकल करेगा अल्लाह ताला उसको कामयाब करेंगे, दुनिया में भी आखिर हर लिहाज से कामयाब करेंगे, जो उनकी नकल करते हुए खुदा न खास्ता दुनिया में कोई नुकसान होगा अल्लाह ताला आखिरत में उससे डबल देंगे। अगर कोई ये लोग समझते हैं कि दाढ़ी रख के शलवार कमीज पहनने से कोई नुकसान हो जाएगा तो ये उनकी गलत फहमी है। अगर आज हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को नहीं अपनाया तो कौन अपनाएगा? उन्होंने हमारे लिए कितनी मुश्किलें उठाई, कितनी तकलीफें देखी, सारी सारी रात खड़े होकर इस उम्मत के लिए दुआएं करते कि या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। तो आज वही उम्मत है जो उनकी रोज आकर सुन्नत को सुबह काट देती है, वही है ना हम सब, तो वही है, हमारे लिए बात हो रही थी ना, या वो अपनी आल के लिए दुआएं करते थे, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, इस उम्मत के लिए सारी दुआएं। तो इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमने अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर लाई, फिर हम कामयाब होंगे। ब्रायन लारा को भी हमने दावत दी 2006 के आखिर में, जब वो पाकिस्तान आखिरी मरतबा आया था, एक घंटा उनसे बात हुई ब्रायन लारा से, तो बात भी ऐसे बंदे से कराई गई जिसकी असल कुर्बानी है दीन के लिए, जो यहूदी था आज से 30-32 साल पहले मुसलमान हुआ, कैलिफोर्निया में वो गिटारिस्ट था, तो जमाते जब जाती है इनको देख के वो मुसलमान हुआ, फिर वो सऊदी अरब में आलिम बना, अब बनोली टाउन में पढ़ा रहा पिछले पता नहीं कितने सालों से, अगर उसको कोई देख ले तो ये कह नहीं सकता कि ये भाई यहूदी था कभी, ऐसी उसकी जिंदगी सुन्नत पे चल रही है। उससे बात करवाई थी उसकी, तो उसने ब्रायन लारा ने कहा ये शख्स जो भी बातें कर रहा है, मैं और सईद भाई गए थे उसको लेकर, तो वापसी पे सईद भाई से वो कह रहा था कि सईद भाई इसने जो भी बातें की है ना बिल्कुल सही बातें की, लेकिन मैं 15-16 साल से पाकिस्तान में आ रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं खेल रहा हूँ और जहां मैं आके रहता हूँ होटल में रहता ना जाकर या प्लेयर्स के साथ, कह रहे उनमें तो मैंने कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इस्लामिक मुल्क है उसमें उसने ऐसा बंदा ही नहीं देखा, अब मुसलमान किताबों में और बातों में रह गए भाई, असल जिंदगी है ही नहीं, कलमा नजर ही नहीं आता हमारे अंदर। सहाबा सुन्नत समझ के करते थे, हम सुन्नत समझ के छोड़ देते। साहबा जब पूरी दुनिया में गए कलमा ले गए तो उन्होंने कहा हमारी तरह हो गए, जब वो पूरी दुनिया में गए ना, ये कलमा जब फैला पूरी दुनिया में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका, हर जगह, चाइना, इधर उधर जहां भी फैला है, तो उन्होंने जाकर कहा था कि हमारी तरह हो जाए। और उन्होंने क्यों कहा जाए, क्योंकि उनकी अंदर नजर आ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इसलिए उन्होंने कहा। आज का मुसलमान तो ये किसी को भी नहीं कह सकता कि मेरी तरह हो जाए भाई, वो कहेगा आपकी तरह ही, गोरे को यहाँ कहेंगे कि मेरी तरह हो जाए तो कहेगा आपकी तरह ही मिरर में खड़े होते तो उन्होंने देख लेते। तो असल चीज है जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तियार कर ली। तो अल्लाह ताला ने जो मुझे कलमा दिया वो भी इसी वजह से दिया कि सईद भाई ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इख्तियार की तो तब मुझे भी फिक्र पैदा हुई कि भाई इन्हें क्या हो गया। मैं तो पहले उनकी जिंदगी भी जैसी थी मैंने वो भी देखी। मैं उनके साथ उसके 20-22 साल से मेरा उनके घर आना जाना क्रिकेट खेलने से पहले मेरे मैं उनका छोटा भाई इकट्ठे खेलते थे। तो जब उनकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नजर आनी शुरू हुई तो मैंने फिर उनसे पूछा, फिर उन्होंने मेरे पे मेहनत की, फिर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। तो मेरी और आपकी और पूरी इंसानियत की जो जिंदगी दीन पर आएगी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से आएगी, इसके अलावा नहीं आ सकती। अगर कोई ये समझ रहे हैं कि मैं पैंट शर्ट क्लीन शेव और सारे आसने से तरीके तोड़कर दुनिया में कामयाब हो जाऊंगा तो आखिरत में भी हो जाऊंगा तो ये नहीं हो सकता। आज सल्लम की शफात के बगैर कोई भी शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिंदगी इख्तियार करेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता हमने भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू की, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। जब मैंने पहली दफा दाढ़ी रखी थी तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये वाजिब सुन्नत है, तो मैंने 1-2 महीने पहले काटता रहा, छोटी करता रहा। लेकिन जब पता चला कि ये वाजिब सुन्नत है, इसको काट नहीं सकते, काटना 24 घंटे का गुनाह है और रखना 24 घंटे का सवाब है। अगर कोई मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं तो वो आपको बता सकते हैं, जो भी पूछना चाहे बाद में उनसे पूछ ले कि ये 24 घंटे का गुनाह है और 24 घंटे का सवाब है। जो काटेगा गुनाह है, जो रखेगा सवाब है। सोएंगे तब भी सवाब है, बाथरूम में जा रहे हैं तब भी सवाब है, हर जगह पे सवाब है। अगर ये दाढ़ी सुन्नत पे रखेंगे एक मुठ, उससे नीचे वाली भी नहीं मानी जाती, एक मुठ से कम दाढ़ी नहीं है। या मैं हम लोग न्यूजीलैंड में थे तो वटोरी की कोई छोटी छोटी दाढ़ी है ना, ये भी जो लास्ट सीरीज हम खेले वहां जाके, तो उसने मुझे कहा भाई तुम ये जो मूछे ये क्यों काट लेते हो। मैंने उसे कहा भाई हमारे नबी की सुन्नत है। तो मैंने कहा तुमने ये दाढ़ी क्यों छोटी रखी हुई है। कह रहे हैं मैं बैक क्रिश्चियन हूं। उसे भी पता है कि जीसस की दाढ़ी लंबी है। सारे नबियों को अल्लाह ताला ने एक मुठ दाढ़ी दी है या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं दी किसी को। ये सारे नबियों की वाजिब सुन्नत है। तो जो भी भाई आप तरीकों इख्तियार करेगा अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में उसको कामयाब करेगा। तो जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे 5 नाम देंगे, 1 दुनिया में और 4 आखिरत। दुनिया में ये उसके रिस्क की तंगी खत्म हो जाएगी। जितने भी अल्लाह ताला उसे देंगे जो जरूरियात की चीजें ना अल्लाह ताला सारी उसको देंगे। तो 4 आखिरत के इनाम है वो ये है कि कब्र का अजाब नहीं होगा, अमालनामा सीधे हाथ में दे दीजिएगा, पूरे रात से बिजली की तरह गुजार दे देगा और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में। ये 5 नाम अल्लाह देंगे जो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे बाद नमाज, और इस यकीन के साथ पढ़ेंगे कि देने वाली जात अल्लाह की, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा तरीका भी यही है, वो मस्जिद में नमाज पढ़ते, क्योंकि अल्लाह ताला का ये घर है भी मस्जिद है। जो मस्जिदों को बात करेगा अल्लाह ताला उनके घरों को बात करेगा। और हदीस में आता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा रहे हैं कि मेरा जी चाहता है कि उनके घरों को आग लगा दूं जो बिना किसी उजर के नमाजें अपने घरों में पढ़ते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत थी, कितनी शफकत थी इस उम्मत के साथ, लेकिन उसके बावजूद नमाज घर पर पढ़ने पर वो ये कह रहे। तो एक तो ये है कि हम 5 वक्त की नमाज मस्जिद में बाजमा पढ़ने की नियत करते हैं ना भाई, इंशाल्लाह सारे कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। और किस तरह भाई हम इतना इल्म हासिल कर ले जिससे हमें हराम हलाल पाकी न पाकी जायज न जायज इसका पता कर दे भाई। इसके लिए हमारे पास उलमा हज़रात हैं, मुफ्ती हज़रात हैं, हमें इनसे पूछना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्या हराम है क्या हलाल है। जैसे हम अक्सर खाने पीने वाली जगहों पर जाकर पूछते हैं ना हलाल है क्या हराम है, इसी तरह हर मामले में हमने इनसे पूछना है अपने उलमा हज़रात से बड़ों से कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इस्लामिक के लिए पूछना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, मशवरे में खैर है। इतना तो हम सबको जरूर पूछना चाहिए, इतना इल्म भी हासिल करना चाहिए। جو قرآن پاک کی ایک آیت سیکھے گا اللہ تعالیٰ 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب، جو ایک باپ سیکھے گا اللہ تعالیٰ 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب، اور جو اللہ کے رستے میں نکلتا ہے اللہ کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور کس طرح ہم ذکر کرنے والے ہو جائیں، ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے. ذکر کی بھائی 3 تسبیحات ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں صبح شام کرنی چاہیے. یہ کہ تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھائی اور خوف کو سامنے رکھتے ہوئے. دوسرا یہ کہ درود شریف پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں، مشقت اور تکلیفیں انہوں نے ہمارے لیے اٹھائی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے. اور استغفار کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے افضل دعا جو ہے استغفار. یہ تینوں تسبیحات صبح شام یکسوئی کے ساتھ کرنا چاہیے. ایسے ہمارے بڑے حضرات کہتے ہیں کہ جو استغفار کم از کم 300 مرتبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی ہے. سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو کم از کم 300 مرتبہ ضرور استغفار کرنا چاہیے. اور جو ذکر کرتا ہوگا بھائی، وہ جنت سے 80 خوشی جنت میں داخل ہو جائے. جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے. جو ذکر کرتا ہوگا اس سے 80 خوشی جنت میں داخل ہو جائے. اور کس طرح ہمارے اخلاق ایسے ہو جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، کوئی توڑتا تھا اسے جوڑ دیتے، جو چھینتا تھا اس کو دے دیتے. جیسے آپ سب کو پتا ہوگا کہ طائف کا واقعہ جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے جو قبیلہ کے سردار تھے ان کو مہذب سمجھ کے دعوت دینے کی کوشش کی، دعوت دی تو انہوں نے آگے سے کیسی گفتگو کی، بچوں نے پتھر مارے، 7 میل تک کم و بیش وہ پیدل چلے، کتنی مشکل اٹھائی ہو. اور اس کے بعد جا کے پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے ان کی شکایت نہیں کر رہے، اپنی ہی کر رہے ہیں کہ میرے میں کوئی کمی ہوگی جب ان کو صحیح بات نہیں بتا. کیسے اخلاق. اور جب وہ فرشتے آئے پہاڑوں پہ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو دونوں طرف کے پہاڑوں میں انہیں کچل دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کا کام کرتے. تو پھر محمد بن قاسم پیدا ہوئے تھے جنہوں نے آ کر برا صغیر میں اسلام پھیلایا تھا، ان کی اولاد میں سے پیدا ہوئے. تو یہ اخلاق ہیں جس پہ دین پھیلا ہے، لڑائی جھگڑے سے، مار کٹائی سے، کسی سے نفرت سے. جیسے آج میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، جو پاکستان میں اکثر لوگ کرتے ہیں جن کو زیادہ دین کا نہیں پتا، وہ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، غیر مسلم سے نفرت کرتے ہیں. ان سے نفرت نہیں کرنی، ان کے مذہب سے نفرت کرنی. ہم سب کو تو اللہ نے بنایا، کرسچن کو بھی اللہ نے بنایا، ہندو کو بھی اللہ نے بنایا، ہم سب امتی ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے ان کے مذہب سے نفرت کرنی، ان سے نہیں کرنی. اگر ان سے کی تو وہ ہمارے قریب ہی نہیں آئیں گے. ہمیں تو ان سے اچھے اخلاق دکھانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھانی، معاشرت دکھانی، تب جا کے یہ ہمارے قریب آئیں گے. تو اگر ہم ان سے نفرت کرنی شروع کر دیں گے تو یہ قریب کیسے آئیں گے. تو ان سے پیار محبت کرنی، ان کو اسلام دکھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھانی، پھر یہ قریب آئیں گے. اس کی کوشش کرنی ہے ہم نے، کس طرح یہ ہمارے قریب آئیں، ایسے اخلاق اپنے بنائیں. اخلاق سب سے مشکل کام ہے، لیکن اگر کوشش کریں گے تو بھائی یہ سارے غیر مسلم ہیں جو اسلام میں داخل ہو جائیں. اور کس طرح ہمارا ایک ایک کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اگر نماز پڑھ رہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھ رہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کر رہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکات دے رہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ دے رہے تو اللہ کو، کوئی بھی کام ہمارا اگر کسی انسان کو دکھانے کے لیے ہوا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھائی کہیں گے جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اسے جا کے دے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسا کام ہم نے، ایسی نیت ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو. اور 124,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کسی نبی نے آ کے کوئی اور کام نہیں کیا، سب نے آ کے لوگوں کے دلوں پہ محنت کی ہے. جو دل لوگوں کے مخلوق کی طرف سے نا، ان پہ محنت کر کے نبیوں نے خالق کی طرف لے کر آئے، کسی نبی نے آ کے اور کوئی محنت. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، ہر وقت انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا 950 سال. 80 یا 82 لوگ تھے جو اس وقت کلمہ پڑھ سکے، بقایا کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. ان میں نہ ان کا بیٹا پڑھ سکا نہ بیوی. تو جب اللہ تعالی نے پانی کا عذاب بھیجا تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری آل کو بخش دے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کی آل یہ نہیں ہے، آپ کی آل وہ ہے جنہوں نے آپ کی بات مانی. نبی کے بیٹے اور بیوی کو بھی اللہ نے غرق کر دیا. मैं और आप किसी के जानने वाले नहीं है और अल्लाह के यहाँ कोई ताल्लुकात नहीं चलते, अल्लाह के यहाँ सिर्फ अमाल चलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई सिफारिश नहीं चलेगी वहाँ, वहाँ सबको हक मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ताला भाई इंसाफ करने वाले, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए अपनी जिंदगी अमाल पे हमने लेके आनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में कई कई महीने चूल्हा नहीं जलता था, क्यों? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सामने खड़े होकर अपनी नमाज और नफल पढ़ते रहते, लोगों को दावत ना देते, तो वो जो लोग थे उस वक्त के वो मुसलमान हो जाते थे? कभी भी ना होते ना। किसी ने दावत दी उनको, किसी ने उनको कलमे के बारे में, अल्लाह के बारे में बताया ना, फिर वो लोग मुसलमान हैं। वो कैसे लोग थे? वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफना देते, जिंदा जानवर गोश्त खाए, ऐसे लोग थे। वो जो साबिक आप है कुरान में है, कुरान में आयत है, बल्कि पूरी सूरत है जी साबिक आप, उसमें चंद नौजवानों ने सिर्फ अपना ईमान बचाने की कोशिश की थी, सिर्फ अपना। तो अल्लाह ताला ने 300 साल उनको सला दिया था, और उनके साथ एक कुत्ता भी चला था, उसको भी अल्लाह ताला ने 300 साल सला दिया था। सिर्फ अपना ईमान बचाने गए थे तो कुरान पाक में उनकी जिक्र आया है, और उस कुत्ते को अल्लाह ताला आखिरत में मैं इंसानी शक्ल देंगे या जो भी, तो वो भी जन्नत में जाएगा। सिर्फ अपना ईमान जो बचाने गए थे उनके साथ वो गया था। तो आज जो लोग ये फिक्र करेंगे कि मेरा ईमान भी बच जाए और दूसरे भी मस्जिद में आने वाले हो जाए अल्लाह के साथ, उनका भी ताल्लुक बन जाए, तो अल्लाह ताला कैसी जन्नत देंगे भी आखिरत में? तो ये जो काम है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये सबसे अफजल काम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया हुआ है। जो काम उन्होंने किया है वो इस उम्मत के जिम्मे है, क्योंकि कुरान में भी आया है जिसका मफहूम है, अल्लाह का मवेशी माफ करे कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि लोगों को नेकी की हिदायत करोगे और खुद भी नेकी वाला काम करोगे, लोगों को नेकी बुराई से बचाओगे और खुद भी बुराई से बचोगे। ये कुरान में तो दावत और तबलीग का काम यही है भाई, एक एक की मिन्नत समाज करना, एक एक के पास जाना, उससे ये कहना कि भाई मस्जिद में आए, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़े, ये है। तो इस काम को करने के लिए कौन कौन तैयार है?
इरादा करते हैं ना सारे,
माशाल्लाह इरादा तो सबको आ जाए, मेरा अपना भी इरादा है।
हाँ जी, नाम लिखाओ भी 3 दिन के लिए, जिसने पहले कभी 3 दिन ही लगाए, 2 दिन कुछ भी वक्त लगाए, जिसने कभी नहीं लगाए, आज कहता है जी मैं नियत करता हूँ, खड़ा होकर नाम लिखाए जी 3 दिन के लिए, पहले कभी नहीं गया, कभी नहीं देखा, देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे प्लेयर भी होंगे टीम में, लेकिन आज यूसुफ भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुक्लैन मुश्ताक, सईद अनवर, ये टूरों पे जाते हैं तो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये कहीं होटलों में चले जाते हैं, किसी और जगह पे चले जाते हैं, लेकिन आज इनको मस्जिद में मेंबर पे बिठाया वाला, कितने लोग आप लोग बात सुन रहे हैं, तो ये कैसे हुआ मेरे भाई दोस्तों? इसके पीछे तो मेहनत है ना, वो जैसे बता रहे ना सईद अनवर ने मेहनत की, तो इस तरह मेरे भाई दोस्तों आप ये काम से ये चाया जाए, इसके लिए इरादा करो भाई, कौन साथी जो है 3 दिन की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आपके फैमिले से जमातें निकलती हैं, तो हमारे ग्रीन फोर्ट से भी जमातें निकलती हैं, इरादा करो भाई माशाल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात सुनी, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी अपने अंदर लेके आऊँगा। मेन तो वही है ना मेरे भाई, मेन तो वही जाया जा रहा है, तो उसके लिए मेरे भाई दोस्तों नाम लिखाओ भाई, कौन कौन भाई कहता है कि भाई मैं इंशाल्लाह इरादा करता हूँ मैं 3 दिन के लिए निकलूंगा।